Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Gyani hai nahi hai. अज्ञानियों के जीवों के भाषा का अनुवाद कर रहे हैं तो ज्ञानी वही है ये एक अज्ञानी के हृदय में बैठकर अज्ञानी के भाव को भी समझ सके। हाँ तो वही तो ज्ञानी है। पिछले साल अंतिम श्लोक 22वें श्लोक में शंकराचार्य जी ने अपनी मन स्थिति का वर्णन किया है। इस श्लोक में जाकर 22वें श्लोक में हमने पिछले साल पूरा किया था। 22वें श्लोक में शंकराचार्य जी ने अपने मन की अवस्था को इस तरह वर्णन किया है और भगवान शिव को उस नाम से संबोधन किया जो वेद ने संबोधन किया। तस्कराणाम पतये नमः। भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं वही तस्काराणाम पतये है। गोपांगनानां च दुगूल चौरम है। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तस्कर शब्द का अर्थ होता है चोर। कृष्ण तस्कर है, चोर है। क्या क्या चोरी किया? ब्रजांगना नाम च दुकूल चौरम। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए वह तस्कराणाम पतये नमः। साधारण चोर तो दूसरे के घर की चोरी करते हैं और चोरों के जो सरदार होते हैं वो अपने घर की चोरी करते हैं, तभी तो वो सरदार हो सकता है। अपने घर की चोरी कर न सके ये चोर किस काम का चोर? अपने घर की भी चोरी करे। कृष्ण लीला में आप लोगों ने तो सुना ही है अपने घर की चोरी किया कि नहीं? मक्खन क्या दूसरे के घर की ही चोरी करते थे कृष्ण है? आप लोगों ने क्या सुना है? संतों से क्या सुना है आप लोगों ने? कृष्ण मक्खन की चोरी करते थे क्या? दूसरों के घर की ही मक्खन चोरी करते थे कि अपने घर की भी मक्खन चोरी करते थे? बोलो है? तभी तो वो चौराग्रगण्य हो गए, वो चोरों का सरदार हो पाए। खाली दूसरों के घर की चोरी करते तो खाली चोर कहलाते, चोरों के सरदार न कहलाते। देख लो, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इसी प्रकार से भगवान शिव को कहा कि तस्कराणाम पतये नमः। चोरों के सरदार, तस्करों के पति, सरदार, मालिक, नियंत्रक। आप तस्करों के सरदार हैं, तस्करों के मालिक हैं, चोरों के सरदार हैं। और मेरे पास एक ऐसा चोर है, उसने हैरान कर रखा है। वो कौन है? जैसे कोई बाप, जैसे कोई बाप एक बेटा पैदा किया और उसका बेटा वो चोर हो गया और चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसको बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया। बाप का हृदय है, बेटा तो मेरा है, और सूचना गई, बाप के पास पहुंची कि तुम्हारा बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया और जेल में बंद है, उसको छुड़ा लो, जमानत देकर छुड़ाओ। बाप गया, जमानत दिया और छुड़ा के ले आए। दो चार बार समझाया, ऐसी बदमाशी नहीं करना, इस बार तो मैं छुड़ाया छुड़ाया, अब बदमाशी नहीं करना। लेकिन वो आदत से मजबूर था बेटा। थोड़ी देर के बाद फिर चोरी करने चला गया, पकड़ा गया। फिर जेल में बंद हो गया, फिर सूचना मिली बाप को कि बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया। बड़ा दुखी हुआ बेटा, बाप बड़ा दुखी हुआ। फिर कुछ दिन के बाद गया और जमानत पर उसका अपने बेटे को छुड़ा के लाया, फिर कहने लगा कि अब बदमाशी मत करियो। लेकिन वो बेटा आदर का मजबूर, कुछ दिन के बाद फिर चोरी करने, फिर पकड़ा गया। बार बार पकड़ा, चोरी करता है, बार बार पकड़ा जाता है, बार बार छुटाता है, लेकिन वो अपने चोरी करने के आदत नहीं छोड़ रहा है। और पकड़ने वाले भी पकड़ रहे हैं, जमानत पर छोड़ रहे हैं। मानो शंकराचार्य जी इसी तरह की बात यहां कह रहे हैं शिव जी से। एक बेटा के रूप में मेरे पास एक मन है, वो चोर है। हाँ, प्रणोबाद्येर अर्थाहरण परतंत्रो धनिगृह। देख लो, मेरा मन अर्थमुखी हो गया। अर्थमुखी होने के कारण वो अर्थाहरणम, धन संपत्ति को पाने के लिए वो बड़े बड़े धनी गृहों में जाता है और धनिकों की चाटुकारी करने लगता है। समझ गए? धनिकों की चाटुकारी करता है। किसके लिए? धन के लिए। धनिकों के घर घर में जाता है, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। और वो लोग नहीं देते हैं तो ये मने ऐसा बदमाशी है कि मांग कर नहीं दे रहे तो चोरी कर लेता हूं, फिर चोरी भी करने लग जाता है। चोरी करने में भी ये मन प्रवृत्त हो जाता है। मैं उसको कई बार समझाता हूं, बदमाशी न कर, चोरी मत कर, लेकिन मेरा कहना मानता नहीं है, फिर ही चोरी करने चला जाता है। ये साधारण पुलिस वाले उसको पकड़कर उसको ठीक कर नहीं पाएंगे, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है। उसको चोरी करने से रोक पाने में साधारण समर्थ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वे जो पकड़ने वाले हैं वो खुद ही चोर हैं। समझ गए कि नहीं? तुम मुझे पकड़ोगे तो तुम खुद चोर हो, तो फिर मुझे क्या हो, तुम ठीक कर पाओगे? सभी के पास मन है और सभी का मन चोरी में अग्रगण्य है, प्रवृत्त हो जाता है स्वार्थ पूर्ति के लिए, वो निषिद्ध कर्म भी करने में प्रवृत्त हो जाता है। तो साधारण जीव इस मन को क्या ठीक करेंगे? वो जिसके पास चोरी का ही मन विद्यमान हो वो चोर को क्या ठीक करेंगे? जिसकी चोरी करने की आदत है वो तो कहेगा कि तू भी चोर ले, कमीशन हमको दे देना। आजकल तो सारा समाज ही इसी तरह चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? पकड़ा भी जाएगा तो ठीक सावधानी से पकड़ना, चोरी करना, लेकिन हमको भी दे देना कमीशन। तो क्या वो कंट्रोल कर पाएंगे भाई? तो शंकराचार्य जी 22वें श्लोक के द्वारा भगवान शिव से अपने मन की अवस्था की बात करते हैं। मैंने कितने बार इसको समझाया लेकिन ये चोरी करना छोड़ता नहीं है, बार बार जाता है। प्रलोभाद्यैरर्था हरण परतंत्रो धनि गृहे प्रवेशो युक्त सन भ्रमति बहुधा तस्कर पते। मेरा मन तस्कर है और तुम तस्कर पति हो, स्वामी हो, और तुम्हारे पास तस्कर मन नहीं है, है? चोरी करने का मन नहीं है तुम्हारे पास, मेरे पास चोरी करने का मन है, है? बोलो, आप लोगों के पास चोरी करने का मन होता है कि नहीं? है? नहीं होता है ना? अरे हमको पता है, मौका लगे कोई नहीं छोड़ने वाला है, है? कोई नहीं छोड़ता मौका। इमं चेतश्चोरम, ये देखो मेरा यह चित्त रूपी चोर है। कथम यह सहे शंकर विभो। बेटा यदि बहुत चोर हो जाए बाप सहन नहीं कर सकता, बेटे की बदमाशी को बाप ही सहन नहीं कर सकता है, तो अहम कथम सहे, मेरे बेटे मन रूपी बेटे की चोरी करने की आदत को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उसको ठीक भी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं भी चोर हूं, तो मैं कैसे। हर चोर ये कहता है बाप चोर हो, और चोर के जेब में से उसका बेटा रोज पैसा चोरी करने लग जाए तो बाप बेटे को थप्पड़ मारेगा। कौन बाप? चोर बाप। मारेगा कि नहीं? तूने फिर मेरे जेब से पैसा चोरी की, तो थप्पड़ मारेगा। और बेटा यदि कहता है पिताजी तुमने भी चोरी की है तो चोरी करके लाया हो पैसा, मैं चोरी कर रहा हूं, तो बाप ये कहता कि चोरी में सीना जोरी, मैं चोरी कर रहा हूं ये तो मैं कर रहा हूं, तू क्यों करेगा। चोर भी ये नहीं चाहता कि कोई और चोरी करे, बदमाश भी ये नहीं चाहता कि और कोई बदमाश करे, लेकिन खुद बदमाश करने वाला और बदमाश को ठीक नहीं कर पाता है, ठीक नहीं कर पाएगा। नहीं चाहे तो ठीक है लेकिन ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं खुद चोर हूं तो इसलिए मैं चोर रूपी चित्त को मैं कैसे ठीक करूं। तो आप तस्कराणम पति हैं, सारे चोरों को दंड देने की क्षमता रखते हैं। कल तक तो इधर एक बोर्ड लटका हुआ देखा था, है? कता है किधर है? अच्छा अच्छा, कल तक तो एक बोर्ड लगाया हुआ था, किस चीज का? मोबाइल का पिक्चर था, उसमें क्रॉस किया हुआ था, मोबाइल में क्रॉस। अच्छा अच्छा, हम सनातनी है, ठीक। ओहो अच्छा अच्छा, ये तो अच्छा काम है, सनातनियों के भी अनुकरण करना चाहिए भाई। मैंने कुछ दिन पहले देखा था यहां कहीं लटका हुआ है ना था, हाँ, मोबाइल का पिक्चर बनाया था और उसमें क्रॉस किया हुआ था। चलो ठीक है, अब तो समझ गए ना आप। तवाधीनम कृत्वा मई निरपराधे कुरु विभो पर कृपाम। इस मन रूपी चोर को मैं आपके अधीन करता हूं और मुझे इसके अपराध से मुक्त कर दीजिए, मैं अपने जिम्मेवारी से अलग हो जाता हूं, इसको आपके हवाले कर देता हूं और मैं अपने जिम्मेवारी से अलग हो जाता हूं। लेकिन बाप के रहते बेटा चोरी करे तो बाप की जिम्मेवारी होती है ना। अब वो जो चोर है बेटा, वो किसी के हवाले कर दो तो अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो गए कि नहीं ना? या तो ठीक करो या किसी को दे दो। तुम्हारे पास बेटे हैं कि नहीं है? क्या तुम्हारे बेटे बदमाश नहीं, चोर नहीं होंगे, इसीलिए तुम अपने पास रखे हो? दायित्व तो यही है, तुम्हारा बेटा यदि बदमाश है तो या तो उसको ठीक करो, नहीं कर सकते हो तो किसी को दे दो, ले जा। तो हमारे आश्रम में एक व्यक्ति आए, पति पत्नी कपल आए, तो बच्चे को लेकर आए, महाराज ये बहुत बदमाश हो गया है, पढ़ता ही नहीं, इसको आप अपने पास रखिए, लेके आए। हमने कहा कि ठीक है छोड़ जाओ, हम इसको ठीक भी करेंगे और उसके बाद इसको चेला भी बनाएंगे और सन्यासी बना देंगे, छोड़ जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, ऐसा है इसको ठीक कर दो, सन्यासी मत बनाओ, ये सच्ची घटना है, ठीक तो कर दो लेकिन सन्यासी मत बनाना है। अब रत्नाकर को यदि साधु महात्मा लोग ऋषि लोग यदि सन्यासी न बनाते तो वाल्मीकि कहां से बनता और रामायण कहां से बनती है? तुम लोग अपने बेटे को सन्यासी बनाने के लिए राजी नहीं हो तो प्रेमपुरी आश्रम में वक्ता कहां से आएंगे है? कहां से आएंगे वक्ता? तो लोग ऐसे बदमाश करते हैं और क्या, ठीक कर दो लेकिन सन्यासी मत बनाओ, अपने आप ठीक नहीं कर सकते। फिर भी हम कोशिश करते हैं, गुरुकुल खोल रखा है, उसको सज्जन बनाने की कोशिश करते हैं, और पढ़ा लिखा विद्वान होता है फिर चला जाता है, तो जाओ बेटा जाओ, कोई बात नहीं है। इसी प्रसंग में अब 23वां श्लोक अब निरंतरता देते हैं, हम 5 श्लोक को हम गाएंगे। ये शिखरणी छंद पर आधारित हैं कुछ श्लोक हैं। करोमि तत्पूजाम सपदि सुखदो मे भव विभो विधित्वं विष्णुत्वं दिशति खलु तस्याः फलमिति पुनश्च त्वं द्रष्टुं दिवि भुवि वहन् पक्षि मृगताम् अदृष्ट्वा तत्खेदं कथमिह सहे शंकर विभो कदा वा कैलासे कनकमणिसौधे सगणेर वसन् शंभोरग्रे स्फुटघटित मूर्धाञ्जलिपुटः विभो सांब स्वामिन् परशिव परम शिव पाहीति निगदन् विधातॄणां कल्पान् क्षणमिव निवेश्यामि सुखतः स्तवेर्ब्रह्मादीनां जय जय वचोभिर्नियमिनां गणानां केलीभिः मदकलमहोक्षस्य ककुदी स्थितं नीलग्रीवं तृणयनमुमाश्लिष्ट्य वपुषं कदा त्वं पश्येयं करधृतमृगं खड्गपरुषं कदा वा त्वं दृष्ट्वा गिरिशतव भव्याङ्गियुगलम् गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन् समाश्लिष्याग्राय स्फुटजलजगन्धान् परिमलान् अलभ्यां ब्रह्माद्यैर्मुदमनुभविष्यामि हृदये करस्ते माद्रौ गिरिशनिकटस्थे धनपतौ गृहस्थे स्वर्भूजाम् अमरसुरभि चिन्तामणिगृहे शिरस्ते सीतांसौ चरणयुगलस्थे अखिलशुभे कमरथं दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः करोमि त्वत्पूजाम्। शंकराचार्य जी कहते हैं भगवान शिव से संबोधन कर रहे हैं, विभो हे विभो, जो सत्ता और स्फूर्ति के द्वारा सर्वत्र व्याप्त है उसको विभू कहते हैं। संबोधन है विभो, विभु माने व्यापक, सब जगह हो, सब जगह हो, जहां वस्तु है वहां पर भी है, जहां वस्तु नहीं है वहां पर भी है, वस्तु के भाव और अभाव का अधिष्ठान बनकर जो बैठा है, भाव और अभाव का प्रकाशक होकर रहता है। यदि अभाव का प्रकाशक न हो तो ये अभाव, वस्तु के अभाव कैसे सिद्ध होगा? वस्तु के भाव को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है वही वस्तु के अभाव को भी प्रकाशित करता है, इसीलिए वस्तु है संबंधी ज्ञान और वस्तु नहीं है संबंधी ज्ञान, ये दोनों वस्तु के भाव और अभाव को प्रकाशित करता है, ये वेदांत का रहस्य है। और भगवान शिव विभु हैं, विभु का मतलब सब जगह है, इसलिए परमात्मा का सर्वत्र अन्वय है, अनुगत है। सूत्रे मणिगणा इव, हर मनके में सूत्र का अन्वय है, माला में विद्यमान जितने भी मनके हैं ऐसा कोई मनका नहीं है जो सूत्र से अनुविद्ध न हो। इसी तरह जगत में जितने भी विद्यमान पदार्थ हैं स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त, कार्य और कारणात्मक, भोग्य और भोक्तात्मक, ये सारे पदार्थ में परमात्मा व्याप्त है। इसीलिए उसको विभू कहा। विभू शब्द का दो अर्थ है, एक तो व्यापक अर्थ में विभू शब्द प्रयोग होता है, दूसरा विशेषण भवती इति विभू, जरूरत पड़ता है तो वह वहीं विशेष उपाधि को धारण करके वहीं प्रकट हो जाता है, कहीं अन्यत्र से आना नहीं पड़ता उसको, कहीं अन्यत्र से आने की जरूरत नहीं है। विभू माने सर्वत्र व्यापक जो परमात्मा है, वो अव्यक्त रूप में रहता है सर्वत्र, और जहां तमाम पदार्थ उपलब्ध हैं उसको विशेष रूप से यदि प्रकट होना होता है तो उसी विद्यमान पदार्थ को उपाधि बनाकर प्रकट हो जाता है। इसीलिए विशेषण भवति इति विभू, उसको जहां भी प्रकट हो जाएगा, जिस उपाधि से भी प्रकट हो जाएगा। परमात्मा को व्यक्त होने में एक ही निश्चित उपाधि चाहिए ऐसा नहीं है, किसी भी उपाधि में पैदा हो जाए प्रकट हो जाएगा, मनुष्य उपाधि में भी प्रकट हो जाएगा, पशु उपाधि में भी प्रकट हो जाएगा, पक्षी उपाधि में भी प्रकट हो जाएगा। विशेष प्रकट के लिए संसार में जितनी उपाधियां परिकल्पित हैं, हर उपाधि परमात्मा ने अपने विशेष अभिव्यक्ति के लिए बनाया हुआ है, और इन्हीं उपाधियों के द्वारा वो प्रकट होता रहता है। तो इसलिए विभू, ये संबोधन द्व्यर्थक है, सगुण साकार के लिए भी विभू है और निर्गुण निराकार के लिए भी विभू है। सगुण निराकार के लिए भी विभू है। करोमि तत्पूजाम, हे विभो अहम तत्पूजाम करोमि, मैं आपकी सेवा करता हूं, आपकी पूजा करता हूं, आपकी अर्चना करता हूं, वंदना करता हूं। सपदि सुखदो में भवा, इसका प्रतिफल है कि मुझे तुरंत मोक्ष देने वाले बने। यह सुखद का अर्थ होता है सुखम ददाती इति सुखद भवा, मुझे सुख देने वाले हो जामे, मुझे विषय देने वाले हो, ये तो साधारण व्यक्ति कहता है, मुझे पदार्थ देने वाले हो जाओ, मुझे विषय देने वाले हो जाओ, ये तो साधारण व्यक्ति कहेगा। असाधारण व्यक्ति क्या कहेगा, मुझे सुख दो। सुख पदार्थ से भी प्राप्ति होती है और बिना पदार्थ का भी प्राप्त होता है। संसारियों को पदार्थ से सुख प्राप्ति होता है, भूख लगी है और उसको बढ़िया भोजन मिल जाए तो उसको उसी में सुख की अनुभूति होगा, उसके अलावा वो सुख अनुभूति नहीं कर सकता है। लेकिन ये ज्ञानी व्यक्ति, वह बिना भोजन के भी सुख का अनुभव करता है, वह दुख का अनुभव कब करता है, जब प्राण से संबंधित होता है तभी जाकर दुख का अनुभव करता है, जब प्राण उपाधि से वह असंग हो जाता है तो उसका दुख का कोई वो नहीं है। वह जैसे सुषुप्ति अवस्था में किसी भी उपाधि से आप संबंधित नहीं होते फिर भी वहां आनंद का अनुभव होता है, ज्ञानी इसी तरह विषय निरपेक्ष सुख का अनुभव करता है। और विषय निरपेक्ष सुख का अनुभव जैसे आप सुषुप्ति में करते हो वैसे ज्ञानी जागृत में ही कर लेता है। इसलिए ज्ञानी को जीवन मुक्ति की अवस्था, उस अवस्था को जीवन मुक्ति की अवस्था की संज्ञा दी गई है। तो सुखदो भवा, आप मुझे सुख देने वाले बने। करोमि तत्पूजा, मेरे पूजा का फल। देखो संसार बड़े विचित्र है, व्यक्ति भगवान की सेवा और पूजा से भी क्षुद्र और लौकिक फल की कामना करता है, इसलिए वो दुखी बना रहता है। इस श्लोक से यह भाव सिद्ध होता है कि भगवान के पूजा अर्चना आराधना प्रार्थना से क्षुद्र फलों की याचना भक्त को नहीं करनी चाहिए। सुखद का अर्थ होता केवल सुखद, न तो वस्तु है, और क्योंकि परमात्मा के पास सुख पर्याप्त है, वस्तु पर्याप्त नहीं है, सुख देने में उसको आसान है। कोई मांगे तब ना, मांगते नहीं है, सुख देने में तो उसके पास आसान है, वस्तु है ही नहीं, इसलिए वस्तु फिर खोजनी पड़ती है उसको देने। तुम यदि कोई वस्तु मांग लोगे तो उसके लिए तो उसको व्यवस्था मिलानी पड़ती है, तिकड़मबाजी करनी पड़ती है, समझ गए कि नहीं। मान लो तुम उदाहरण दो कि तुमको बेटा नहीं है, अब तुमको बेटा चाहिए, है ना, तुम भगवान से प्रार्थना करो, पूजा करो और कहो कि मुझे बेटा दो, पुत्र दो, तो उसे पुत्र देने के लिए तिकड़म करना पड़ता है, वो सीधा पुत्र नहीं दे पाया, तूने मांगा और दे दिया, इतना आसान नहीं है, वस्तु देने में इतना आसान नहीं है, बड़े तिकड़म करना पड़ेगा। फिर किसी लड़की से तुम्हारा संबंध जुड़वाएगा, और यदि जुड़ चुका और पुत्र नहीं हुआ है तो फिर वो और तिकड़म करेगा, फिर डॉक्टर से संबंध मिलाएगा, फिर दवाई लो, उतनी से भी नहीं हुआ रहा, फिर तिकड़म करो तो बोले किसी महात्मा से संबंध जुड़ा देगा, मंत्र ले लो, ले जी, हे भगवान कितनी कष्ट है, मांग तो रहे हो तुम उससे, उसको देना बहुत आसान नहीं है, तिकड़मबाजी भिड़ाता जा रहा है, भिड़ाता जा रहा है, अब किस दिन उसका सफलता मिलेगा तो तुम्हें ले मांगा था ना, कर देगा वो तो, लेकिन सुख यदि मांगोगे, शांति यदि मांगोगे, वो तो उसके पास ऑलरेडी विद्यमान है, तुम कहो कि महाराज भगवान मुझे शांति दो तो तुरंत दे देगा, सुखदाह भक्त को उसके अलावा दूसरी चीज नहीं मांगनी चाहिए, उत्तम भक्त का लक्षण यह है। बाकी और चीज मांगते हैं तो वो मध्यम या कनिष्ठ भक्त है, उत्तम भक्त वस्तु नहीं मांगता है, सुखदा। करोमि त्वत्पूजां, शंकराचार्य जी एक साधारण भक्त के हृदय में रहकर ये भाव व्यक्त कर रहे हैं, करोमि त्वत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो। भगवान शिव, कदाचित भगवान शिव शंकराचार्य जी डर रहे हैं साथ, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर यदि भगवान शिव मुझे साधारण जीव की तो बातें छोड़ दो, ब्रह्मा विष्णु आदि पद यदि दे देंगे तो बोले महाराज ऐसी गलती मत करना, मुझे वो पद नहीं चाहिए। हैं? क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? बोले अरे हमने सुना है पुराण में, पढ़ा है पुराण में, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, सुना है कि नहीं, ब्रह्मा और विष्णु बनने के बाद भी अहंकार का, अभिमान का, जष्टत्व श्रेष्ठत्व का घमंड हो गया, पुराणों में सुना है कि नहीं आप लोगों ने, हैं? सुना है, पढ़ा है, पुष्पदंताचार्य शिव महिमा स्तोत्र में इस बात को भी लिखते हैं, शिव पुराण में एक कथा है और उसी के आधार पर शंकराचार्य जी ये बात कह रहे हैं, मुझे विष्णु का पद देना चाहो तो भी नहीं चाहिए महाराज, ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद देना चाहो तो भी नहीं चाहिए। क्यों भाई, ब्रह्मा विष्णु इंद्र बनना क्यों नहीं चाहता है? अरे जो बने हैं उनकी हालत तो देखो, और तुम मुझे बनने के लिए प्रलोभन कर रहे हो, उनके जो उनके हालत देखो, क्या हुआ उनको? विधि त्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्य फलमिति, आपके दिया हुआ जो विष्णुत्व पद, विरिंची पद, इंद्र पद, उसका फल तो यही तो है, क्या फल है? पुनश्च त्वं द्रष्टुम, उन लोगों को आपके दर्शन करने की इच्छा हुई, एक तो इधर आपस में ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व का घमंड हुआ, मैं ज्येष्ठ मैं श्रेष्ठ, ब्रह्मा कहने लगे मैं बूढ़ा हूं, मेरे नाभि कमल से बच्चा जो है ना मां के पेट में से एक नाले, एक नसा से जुड़ा हुआ होता है, विष्णु कहते हैं तू मेरा बेटा है, ब्रह्मा कहते हैं तू मेरा बेटा है। अभिवादनशीलस्य वृद्ध नित्यम वृद्धोपसेविनम, जिसके स्वभाव में नित्य निरंतर विनम्रता हो और नित्य निरंतर वृद्धों की सेवा करने का स्वभाव हो। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनम चत्वारिम तस्य वर्धन्ते आयुर्वित्तम यशोबलम, उस व्यक्ति का चार चीज अपने आप ही बढ़ने लग जाता है, अपने आप बढ़ने लगता है। और अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या यत्र व्यतिक्रम चत्वारिम तस्य नश्यन्ते आयुर्वित्तम यशोबलम, जिसकी सेवा करनी है उसकी सेवा करते नहीं और जिसकी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है उसकी सेवा में लग जाते हैं। आजकल तो यही तो करते हैं ना, घर में बूढ़े मां बाप हैं उनकी सेवा करनी चाहिए तो उनकी तो सेवा करते नहीं है और पत्नी की सेवा करने में जिसकी जरूरत ही नहीं है उसकी सेवा करने में लग जाते हैं, तो उनका क्या अभिवृद्धि होगी, क्या श्री बढ़ेगा, बोलो क्या श्रेय बढ़ेगा उनका। आजकल कर ही रहे, पत्नी का कहना मान जाते हैं, मां बाप का कहना मानते नहीं, इसीलिए वो लोग दुखी रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु को, अरे तू मेरा अभिवादन नहीं कर रहा, मैं बूढ़ा हूं तू जवान है, और जवान को चाहिए कि वृद्धों की सेवा करे।